नमस्कार भारत, आज है 11 मार्च दिन शनिवार और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों से आज उठेगा पर्दा। यूपी में बीजेपी का दावा, सपा कांग्रेस बसपा की मिलकर मात देने की कोशिश होगी नाकाम।
तीन कमजोर मिलके आपस में एक मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन शून्य प्लस शून्य शून्य होता है।
पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय, मगर कांग्रेस का दावा नतीजे एक तरफा रहेंगे।
कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकार बनाएगी।
वहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में आशा और असमंजस से उड़ी नींद।
नींद कहाँ है नीजी? नींद तो आ नहीं रही, कल 11 बजे के बाद ही आएगी नींद।
उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर का भी होगा जिक्र और होगी अखबारों की समीक्षा भी। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। आज पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटें, मणिपुर की 60, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और पंजाब की 117 सीटों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। वोटों की गिनती 157 केंद्रों पर होगी। पंजाब में 53, गोवा में 2, उत्तर प्रदेश में 75, उत्तराखंड में 15 और मणिपुर में 12 केंद्रों पर मतों की गिनती होगी। मतगणना स्थलों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। एक अमरीकी अदालत ने जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को डीजल उत्सर्जन स्कैंडल मामले में दोषी पाया है। फॉक्सवैगन ने अमरीकी न्यायिक विभाग से समझौते के तहत 4 अरब से ज्यादा डॉलर देने का समझौता किया है। फॉक्सवैगन का मानना है कि 2009 और 2015 की गाड़ियों के डीजल उत्सर्जन में अमरीकी नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया था। कंपनी ने कारों में एक सॉफ्टवेयर फिट करके लगातार ये धोखाधड़ी की थी। अमरीकी अभियोक्ता जॉन नील ने इसे पूरी तरह से नियोजित एक ऐसी धोखाधड़ी बताया जिसमें संस्था के शीर्ष लोग शामिल थे। अमेरिका में वाशिंगटन की सड़कों पर स्टैंडिंग रॉक नेशन के सैकड़ों सदस्यों और समर्थकों ने विवादित डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के विरोध में प्रदर्शन किया। पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3.8 अरब डॉलर की योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। ओबामा प्रशासनकाल के दौरान इस योजना को रोक दिया गया था। अमेरिका की दो मूल जनजातियों का कहना है कि ये योजना हमारी उन जगहों और पानी को प्रदूषित करेगी जिन्हें हम पवित्र मानते हैं। व्हाइट हाउस के पास एक रैली में याकामा नेशन के प्रमुख जॉयड एल गुडी ने कहा,
वाटर इज ए सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन मदर अर्थ, वी आर डिस्टिंक्ट एंड स्पिरिचुअल नेशंस।
हमारी मातृभूमि का मुख्य स्रोत पानी है। हम एक अलग और आध्यात्मिक राष्ट्र हैं जो अमेरिका की अवधारणा को बनाए रखना चाहते हैं। हम आज ये संदेश और चेतावनी देना चाहते हैं कि धरती से प्यार करो, धरती के पानी से प्यार करो, जीवन के हर रूप को प्यार करो, उसका सम्मान करो और वो जीवन भर आपकी देखभाल करेंगे। अगर आप उसे जहरीला बनाओगे और बर्बाद करोगे तो वो आपको बर्बाद कर देंगे। ये थे जॉयड एल गुडी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मटीज ने सोशल मीडिया पर महिला सहयोगियों की नग्न तस्वीरों को साझा करने वाले सैन्य कर्मियों की पूरी जांच का वादा किया है। अपने एक बयान में मटीज ने कहा कि ये काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सम्मान की कमी और यूनिट की एकता के विपरीत है। उन्होंने कहा इस मामले में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी मरीन की कुछ पूर्व और वर्तमान महिला सदस्यों ने शिकायत की है कि उनकी तस्वीर अश्लील और भद्दी टिप्पणियों के साथ बिना उनकी सहमति के शेयर किए गए थे। सोशल मीडिया पर उनको शेयर किया गया था। नौसेना की आपराधिक जांच सेवा ने उन महिलाओं के आगे आने का आग्रह किया है जिनके फोटो शेयर किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी सूडान के और 10 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी सूडान के कुछ हिस्सों को अकालग्रस्त घोषित किया था। पिछले 6 साल में ये पहला देश है जिसे अकालग्रस्त घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता येंस लियोक ने बताया कि जिन लोगों के पास खाने के पर्याप्त स्रोत नहीं है उनकी तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि मध्य दक्षिण सूडान में मानवीय सहायता कर्मियों को खतरा हो सकता है। येंस लियोक ने कहा,
Overall, apart from the areas where famine is already declared,
इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी के मुताबिक जिन लोगों में अकाल घोषित के इलाकों में अकाल घोषित कर दिया गया है उनके अलावा दक्षिण सूडान के 10 लोग अकाल की कगार पर खड़े हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कोई 2.25 महीने पहले चुनावों के ऐलान से शुरू हुआ अटकलों, अनिश्चय और अनुमानों का दौर आज समाप्त हो जाएगा। अब से लगभग 1.5 घंटे बाद इन पांचों राज्यों में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच विभिन्न चरणों में पड़े मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। असल चुनावी रणनीतियां तो शायद पर्दे के पीछे तय होती होंगी, मगर राजनीतिक चर्चाओं में दावों, प्रतिदावों, अनुमानों, आकलनों का जो सिलसिला चुनाव के ऐलान से पहले शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बीबीसी से मुखातिब थे। अखिलेश यादव ने भविष्य को लेकर एक बड़ा संकेत दिया और कहा कि बहुमत न मिलने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का विकल्प खुला है। ये संकेत पढ़ते ही विरोधी दल मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए। इसके एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से बातचीत में डैमेज कंट्रोल की कोशिश में दिखे।
आपसे बात करते समय भी उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, उससे आगे की बात जो है वो उन्होंने कही होगी, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं 100% सर्टेन हूँ कि मुझे 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रियलिटी को जानता हूँ, मैं जानता हूं कि मैं किस जगह से चुनाव जीत रहा हूं, किस जगह से हार रहा हूं।
उन्होंने मतदान के बाद सामने आए तमाम एग्जिट पोल्स को भी खारिज कर दिया। एग्जिट पोल को बहुजन समाज पार्टी भी खारिज कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों के संभावित गठजोड़ की संभावना पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं,
जो लोग अभी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ की सरकार का सपना देख रहे हैं, तो जुगाड़ की सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साल 2002 से सत्ता से बाहर है। 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में हुए चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हर दौर में प्रचार अभियान को अलग दिशा देने की कोशिश की। आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिन तक वाराणसी में जमे रहे। ज्यादातर एग्जिट पोल में बढ़त की संभावनाएं दिखाए जाने से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस तमाम अनुमानों को खारिज करने में जुटी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं,
गठबंधन यूपी में जीतेगा और क्या कहना है। बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने, आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में?
जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें कांग्रेस के मंसूबों को चोट सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगती नहीं दिखती, उत्तराखंड में भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ते दिखाया गया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा के लिए 15 फरवरी को वोट डाले गए थे। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में भी बहुमत हासिल करने का दावा कर रही है। यहां 4 फरवरी को वोट डाले गए थे। पंजाब में मुकाबला सत्ताधारी अकाली बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। आज नजरें गोवा और मणिपुर पर भी होंगी। गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए 4 फरवरी को वोटिंग हुई थी, वहीं 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा के लिए 4 और 8 मार्च को मतदान हुआ था। जीत के दावे चुनाव में उतरा हर दल और हर प्रत्याशी कर रहा है, लेकिन जीत का सहरा किसके सर सजेगा ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा।
5 राज्यों में सबसे ज्यादा कौतूहल उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर है, जहां लड़ाई त्रिकोणीय होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे एक ओर भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ अन्य दल। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा को यही लग रहा है, जिन्होंने हमारे सहयोगी वात्सल्य राय से बातचीत में अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर दावे किए जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच तालमेल की संभावना का संकेत मिलता है।
आदरणीय अखिलेश जी सरल और सौम्य हैं। उनके बारे में ये रहा कि ना तो अधिकारियों ने सुना, ना परिजनों ने सुना, ना मंत्रियों ने सुना। आज जिस प्रकार से वो अपना खंडन करते थे और बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रक्षाबंधन मनाएगी चुनाव के बाद में, आज होली का मौका है और होली के अवसर पर वो कह रहे हैं कि हम बुआ जी के साथ भी जा सकते हैं और बुआ जी के साथ ला सकते हैं। जो हमारे नेता कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी 3 दल हैं, लेकिन दिल तीनों के एक हैं, तीनों की रीति नीति सिद्धांत और मंतव्य एक हैं, 3 कमजोर मिलके आपस में एक मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन 0+0 होता है। और मुझको लगता है कि अवसरवादिता को जनता ने हमेशा नकारा है। मुझको लगता है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है 11 तारीख के बाद ये गठबंधन में बदलेगा। बीजेपी ना आए इसके लिए सबका स्वर एक मिल रहा है, लेकिन बीजेपी दलों की सीमा से हटकर पूरे विश्वास के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
डॉक्टर शर्मा, जैसा आपको उम्मीद है कि पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, कौन मुखिया होगा सर सरकार का?
देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी में ये परिवारवादी दृष्टिकोण नहीं है। यहाँ पर एक नेहरू खानदान का ही होगा, वहाँ पर यादव परिवार का ही होगा, ये परंपरा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पद से अधिक योग्यता को धारित करते हैं।
जी, आपका नाम भी चल रहा है।
नहीं, मैंने कहा ना कि हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा नहीं रखता है। बीजेपी में मैं नहीं है, तू है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा। यूपी चुनाव पर विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे पूर्व सहयोगी रामदत्त त्रिपाठी दिल्ली स्टूडियो में आ चुके हैं। स्वागत है रामदत्त जी आपका।
नमस्कार
जी। आपसे चर्चा बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले लखनऊ का हाल लिया जाए, जहां विनीत खरे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं। विनीत, बड़ा मुश्किल काम है माहौल को समझाना और उस माहौल का मतलब निकालना, लेकिन फिर भी नज़ारा क्या है लखनऊ में अभी?
देखिए, मैं रिपोर्ट सुन रहा था वात्सल्य की, प्राइवेट पब्लिकली शायद जो भी कहीं पार्टियां प्राइवेटली कह रही हैं कि ये हंग असेंबली की संभावना सभी जता रही हैं। बहरहाल, कल मैं विभिन्न दफ्तरों के ऑफिस में गया और कल बारिश हो रही थी लखनऊ में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर था, वो बोला कि आज कीचड़ बनेगा तो कल कमल खिलेगा, इस तरह की संभावना थी। सभी लोग बहुत ही कॉशियस हैं, जैसे लल बिफोर द स्टॉर्म जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर उसके बाद से मैं सपा गया, वहाँ पर जो एक कोई नेता नहीं है और जो उनके जो वॉर रूम के जो सभी कोलीग्स हैं वो चंबल की सैर करने के लिए गए हैं सफारी के लिए। कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं था, सन्नाटा था। वहाँ पर भी सभी को इंतजार था, टीवी के सामने सब चिपक के बैठे हुए थे और आज 9:30 के आसपास नेता जुटने शुरू होंगे। तो उम्मीद है कि सभी पार्टियां उम्मीद तो जता रही हैं, लेकिन प्राइवेटली अगर आप बात करें तो हंग असेंबली की बात सभी स्वीकार रहे हैं और ये टफ फाइट की बात कर रहे हैं। मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स खुला है और वो उसमें अखिलेश ने एक इंटरव्यू दिया है हिंदुस्तान टाइम्स में और कहा है कि उस संभावना जो बीएसपी के साथ जताई जा रही है उसको इनकार नहीं किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये सब कुछ नंबर्स पे डिपेंड करेगा। और उन्होंने कहा है कि मैंने बस इतना कहा था कि हम बीजेपी को रोकने के लिए किसी के साथ अलायंस करने के लिए ओपन है, तो ये बात कही है
जी। और वैसे जब आप कल गए थे उन दफ्तरों में, आप कह रहे हैं कि बारिश है, तो शहर का मूड क्या दिखता है? जो पब्लिक है वो सड़कों पर दिखाई देती है, मतलब चर्चाओं का दौर इसी तरह का लग रहा है आपको, या फिर जैसे नेता लोग चले गए हैं इधर उधर सैर करने के लिए, चंबल चले गए हैं, मतलब एक आराम जो होता है बड़ा काम से पहले, उस तरह का माहौल जनता में भी दिखाई दे रहा है?
देखिए, एंग्जाइटी है और हर जगह, आप यहाँ पर चाहे मैं जिस होटल में रुका हूँ या फिर आप सड़कों पर जाएं, खाना, मैं कल लंच कर रहा था एक होटल में, हर जगह हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है कि क्या पार्टी ये समाजवादी पार्टी वापस आएगी भारत, और ये संभावना किसकी पार्टी की ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट से बात कर रहे हैं। अगर आप मिडिल क्लास से बात कर रहे हैं या फिर उनसे, वो तो भारतीय जनता पार्टी की संभावना ज्यादा जताते हैं। अगर आप दलितों से बात करेंगे तो वो बीएसपी की संभावना ज्यादा जताते हैं, तो सेगमेंट पर डिपेंड करता है। बट ये टफ फाइट है, हर कोई 6 बजे मतलब अब तक उठ गया होगा, टीवी के सामने सब बैठ जाएंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
अगले 3-4 घंटे, आप भी काफी पहले जाग गए हैं और अभी लंबा दिन है आपके लिए, तो फिर बात होगी आपसे दिन भर में विनीत। तो जी रामदत्त जी, सुना अभी आपने कि बड़ी शांति है, लेकिन जो असमंजस है, जो अनिश्चितता है, वो तो बनी ही हुई है। तो ये बताएं कि ये चुनाव पहला नहीं है आपका भी यूपी का, तो चुनाव जो ये दिखाई दे रही है अनिश्चितता, क्या नया है इस बार के चुनाव में या चुनाव ऐसा ही होता है?
देखिए, नर्वसनेस तो है और वो आखिरी दौर में बनारस के प्रचार में भी दिखी थी सभी में। और इस बार देखिए, एक जो नयापन सबसे बड़ा ये है कि हम कह सकते हैं कि 1992 के बाद ये त्रिकोणीय चुनाव है। आमने सामने का जब चुनाव होता था, जो 2007 में 2012 में, तो बड़ा आसान होता था कि जो लोग सरकार से नाराज़ हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं और परिवर्तन हो जाता था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में ये कहना मुश्किल है कि रिजल्ट क्या होगा। वो अर्थमेटिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ अर्थमेटिक्स भी काम आती है, लेकिन जो माहौल है, जो तमाम लोगों से मूड देखा गया, उसमें परिवर्तन का माहौल तो है
जी।
लोग सपा बसपा के बजाय भाजपा के साथ जुड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं मैजिक नंबर पे, क्योंकि 1996 में भी हमने देखा था
जी,
1993 में भी हमने देखा था कि बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते फिर वो उनके हाथ से डोर फिसल गई थी। फिर बाद में 96 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, फिर राष्ट्रपति शासन लगा करके उन्होंने फिर जुगाड़ किया, विधायकों को तोड़ा और पावर शेयरिंग का जो वो किया था।
जी जी, तो जो बड़ी चीज़ जो रहेगी जिस पर नज़र आज लोगों की, वो क्या, जो चेहरा जो बीजेपी का है वो तो केवल नरेंद्र मोदी ही दिखाई दिए, तो क्या आपको लगता है कि सारा का सारा फोकस जो नरेंद्र मोदी की तरफ होगा, या अगर रीजन है तो रीजन में अपने अपनी सीट्स होती हैं उनकी तरफ भी ध्यान जाता है लोगों का, उस तरफ भी रहेगा?
देखिए, चुनाव में तो चेहरा ये नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश यादव मोटे तौर पे चेहरे का चुनाव हुआ, लेकिन अब तो फर्क हो जाएगी स्थिति, क्योंकि जैसा कि अभी दिनेश शर्मा ही कह रहे थे कि बीजेपी में तो दर्जनों लोग हैं और वो दावेदार भी हैं, अंदर से लॉबिंग भी कर रहे हैं, और इसी चक्कर में पॉलिटिक्स में दिनेश शर्मा का टिकट भी कट गया लखनऊ
से, हाँ, नहीं तो मिला। बड़ा दावा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सबसे उदार उन्हीं की पार्टी है, कि सब एक दूसरे को देने के लिए तैयार हैं।
मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उन्हीं का टिकट कट गया, नहीं पाए वो लखनऊ से।
चलिए, तस्वीर अभी साफ होगी आप उत्तर प्रदेश चुनाव की, अब शाम तक तो हो ही जाएगी, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी पहले उत्तराखंड की चर्चा कर लेते हैं, जहां 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए 15 फरवरी को चुनाव हुए थे। वहां पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को लगभग बराबर बराबर सीटें मिली थीं। देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रसाद जोशी हमारे साथ हैं। शिव, मतदान हुए लगभग एक महीना होने जा रहा है उत्तराखंड में, तो ये जो लंबा इंतज़ार है नतीजों का आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुकाबला बराबरी पर ही छूटेगा पिछली बार की तरफ, या फिर कुछ अलग होने की उम्मीद कर रहे हैं लोग वहाँ?
देखिए अपूर्व, ये बात सही है कि उत्तराखंड के जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव थे और अब ये चौथा, हमेशा यहाँ पर जो डायरेक्ट फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है, और नतीजे भी कमोबेश बहुत ही नजदीकी रहे हैं, बहुत ही नजदीकी छूटी है लड़ाई हर बार। तो इस बार भी संभावना ऐसी है, बस इसमें एक मोड़ दिलचस्प किस्म का एक ये आ गया है, जो पिछले दिनों कुछ ज्यादातर जो एग्जिट पोल और जो अनुमान वगैरह लगाए गए हैं उनमें बीजेपी को बड़ा दिखाई गई है। हालांकि अभी भी यहाँ पर जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, ज्यादातर जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल, जहाँ पिछले एग्जिट पोल्स में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, लेकिन एग्जिट पोल से उलट नतीजे यहाँ पर आते रहे हैं, लिहाजा अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसी एक दल को बढ़त मिलने वाली है। हाँ, सही है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर जरूर है, और पिछली बार जैसे आपको पता है कि 1 या 2 सीटों के फासले से कांग्रेस जीती और एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पड़ती रही है लगभग हिमाचल के पैटर्न पर, अपने पड़ोसी हिमाचल के पैटर्न पर, तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर होगी या हरीश रावत सफल हो जाएंगे, और जैसे वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें 5 साल मौका दिया जाए जो कि उन्हें नहीं मिला है, उसमें वो सफल हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये चुनाव अपूर्व एक तरह से पूर्व कांग्रेसी जो बगावत करके गए हैं और ये हरीश रावत कांग्रेसी जो इस समय कांग्रेस है, इन दोनों के बीच का मुकाबला है। अब ये देखना ये है कि कुछ ही घंटों में सफल क्लियर हो जाएगा कि किसके हाथ बाजी लगने वाली है।
जी, नजर रखें आप शाम को सभा अपनी जो होगी, दिन भर उसमें तो चर्चा होगी ही। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देहरादून से शिवप्रसाद जोशी। तो एक बार फिर रामदेव जी से बात करते हैं। रामदेव जी, यूपी की सियासी चर्चा में दब सी जाती है उत्तराखंड की चुनावी लड़ाई की चर्चा, लेकिन लड़ाई वहाँ भी कोई कम दिलचस्प नहीं है, जैसा शिव कह रहे थे एकदम कांटे की टक्कर।
वहाँ दिलचस्प भी है, उसके अलावा बड़ी इंटेंस होती है, मतलब जब छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है
जी,
तो उसमें बहुत ही सब एक दूसरे से परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, तो वो बहुत इंटेंस हो जाती है लड़ाई। लेकिन ये जरूर है कि हरीश रावत का एक फाइटर संघर्षशील का जो स्वरूप देखा हम लोगों ने, किस तरह से उन्होंने अपनी सरकार को वापस पाए हैं, तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के संगठन की जो कमजोरी है, छोड़ के लोग चले गए, और जो कांग्रेस के संगठन की कमजोरी पूरे देश में है वहाँ भी है, कि अब ग्रास रूट पे, जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कम बच गए हैं
जी,
तो ये कांग्रेस की एक कमजोरी है वहाँ पर। और फिर जाहिर है कि लोग कई बार सीधी लड़ाई जहाँ होती है दो दलों में, तो लोग परिवर्तन का हो जाता है, लेकिन हरीश रावत फाइटर हैं और जमीन से जुड़े आदमी हैं
जी,
तो इसलिए वो उम्मीद लगाए हैं अभी
जी, तो देखा
मुश्किल
जाए।
है हाँ
हाँ, देखा जाए क्या रहता है वहाँ पर नतीजा। बहुत बहुत धन्यवाद रामदत्त त्रिपाठी आपका कार्यक्रम में आने के लिए, आपसे आगे भी चर्चा होगी, और फिलहाल चर्चा पंजाब की।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
पंजाब में विधानसभा चुनाव में अब तक मुकाबला दो पक्षों के बीच होता रहा था। एक तरफ कांग्रेस होती थी, दूसरी तरफ संयुक्त अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। मगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के भी मैदान में आ जाने से पंजाब की चुनावी जंग त्रिकोणीय हो गई है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है, मगर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी इसे नहीं मानती। उनसे बात की वात्सल्य राय ने।
कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है वो कंफर्टेबली अपनी सरकार बनाएगी।
लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सीटों की कमी रहती है, जिस तरह का एग्जिट पोल में सामने आया है, तो आपके क्या विकल्प हो सकते हैं?
आगे का कोई विकल्प की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। फील्ड में हमारे पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं, हम उनकी रिपोर्ट पे जाते हैं, उनकी रिपोर्ट पे ही हम आकलन करते हैं, हर सीट का आकलन करते हैं और इलाके का आकलन करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं।
कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी। लेकिन पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो दिल्ली की तरह पंजाब में भी सबको चौंकाएंगे। पार्टी के सांसद भगवंत मान से बात की हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने।
देखिए, ये एग्जिट पोल जो है ना, ये पिछली बार भी फेल हुए थे, उससे पिछली बार भी फेल हुए थे, तो आजकल लोग नहीं बताते अपने दिल की बात, तो लेकिन जो रिजल्ट आएंगे तब ये एग्जिट पोल जो है वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने जो गुस्सा निकाला है मशीनों पर वो बता रहा है जो हाई टर्नआउट मोर देन 86% टर्नआउट जो है वो कांग्रेस के लिए नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी है दोनों के खिलाफ, तो 90 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं।
यानी आप कह रहे हैं कि आपको 90 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो सरकार अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है,
बड़े बहुमत से बनेगी सरकार।
तो सरकार की सूरत क्या होगी, क्या लीड आप करेंगे मान साहब?
देखिए, इसके लिए पीएसी फैसला करेगी, इसके लिए हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, और जो भी जिसकी भी ड्यूटी लगेगी, जहां भी ड्यूटी लगेगी, वो हम सिपाही हैं। सिपाही का मतलब है जिस मोर्चे पर भी ड्यूटी लगे हम अपना फर्ज निभाएंगे।
नहीं, लोग आपकी भूमिका भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार में मान साहब आपने सबसे अहम रोल अदा किया, तो इस चुनाव नतीजे के बाद आपकी भूमिका खुद की क्या होगी?
क्योंकि मैं चुनाव प्रचार कमेटी का चेयरमैन था, तो मेरा फर्ज बनता था ये काम करना, मैंने कोई सहन नहीं किया। तो जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई, पार्टी ने कहा पार्लियामेंट में बोलना है, वो पार्लियामेंट में गए। पार्टी ने कहा जलालाबाद से लड़ो, लड़े। पार्टी ने कहा पूरे पंजाब में जाना है, गए। तो बीइंग ए चेयरमैन ऑफ कंपेन कमेटी, ये मेरा फर्ज है, मैंने निभाया। आगे पार्टी क्या भूमिका देती है, किसको कहाँ, वो भी हमें मानना होगा
जी। यानी मुख्यमंत्री की भूमिका मिलती है तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे?
देखिए, ऐसा नहीं है कि तैयार रहूंगा या कोई हमारा कोई धड़ेबंदी है, पूरा पंजाब ही हमारा धड़ा है, अगर हम ग्रुप में विश्वास नहीं रखते। आम आदमी पार्टी कारें जो सरकारें बदलने नहीं आई, ये किस्मतें और सिस्टम बदलने की बातें करते हैं।
आप सांसद भगवंत मान। पंजाब के चुनावी नतीजों पर नजर रखने के लिए हमारे सहयोगी सलमान रावी पंजाब पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी खेमे में क्या है मूड, इसको भापने के लिए सलमान कल पहुंचे मोहाली में आपके दफ्तर।
इस वक्त काफी गहमा गहमी है पंजाब के मोहाली में, और मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। बहुत दिल की धड़कनें बड़ी होगी?
नहीं, हमारी दिल की धड़कन नहीं बड़ी, हमारी तो हम तो खुशी से झूम रहे हैं। हमारी तो धड़कन बड़ी है तो खुशी से बढ़ रही है।
धड़कन तो खुशी से भी बढ़ती है?
खुशी से बढ़ रही है।
तो क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं?
नहीं, हम एग्जिट पोल को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पीछे का जो दिल्ली का है हिस्ट्री तो उसको देखें, तो सभी ने तभी हमारे को 26 या 28 सीट्स दी थी और आई थी 67 सीट्स।
पार्टी के लोगों में काफी उत्साह है, ये बताइए कि एक तो नई फोर्स है आम आदमी पार्टी पंजाब में, पहले लोकसभा में थोड़ा सा प्रेजेंस था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में काफी बड़े पैमाने पर आपने लॉन्च किया अपने आप को।
बिल्कुल, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं उन्होंने बहुत जोश है, बहुत कॉन्फिडेंस है, सो डेफिनेटली आप इज गोइंग टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट इन पंजाब।
बहुत एक्साइटमेंट है, और जो ये सर्वे आ रहे हैं इसमें 60% लोगों ने ओपिनियन दिया है, 40% अंडर करंट है। वो जो अंडर करंट कुछ नहीं बता रहे, किसी को नहीं बताया, वो एकदम जो आग का भांबड़ है वो निकलेगा।
कल निकलेगा 10 बजे तक निकल जाएगा।
ये बताइए कि यहीं पर अकाली दल का भी ऑफिस है लेकिन बंद है शायद?
तो 4 से पहले 1 तारीख को बंद हो गया था।
तो कितनी सीटें आएंगी, क्या लग रहा है?
थंपिंग मेजोरिटी नाल आएगा,
100 आएगी।
पंजाब दा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने जा रहा है, जेड़ा इतिहास सिरजेगा नवा।
मर्केंडेट साहब
जी, आप उम्मीदवार भी हैं यहाँ इस विधानसभा सीट?
हाँ जी।
क्या क्या लग रहा है आपको, सिर्फ आपका ही नहीं पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी का, आपका नाम पहले बता दीजिए।
मेरा नाम नरेंद्र सिंह शेरगिल, मोहाली से कैंडिडेट हूँ। पूरे क्लीन स्वीप हो रहा है जी,
लेकिन कांग्रेस वाले भी बड़ा खुश हैं, कह रहे हैं कि हम भी स्वीप कर रहे हैं।
देखो ये बात है जी, जो एग्जिट पोल है ना, ये हम इसको कॉरपोरेट पोल कहते हैं, ठीक है। हमारे आम आदमी पार्टी पास तो करोड़ों रुपये है नहीं भी हम चैनल चलाएं, उन्होंने फिर भी 40-50 दे दी, इसका मतलब 100 से ऊपर तो हम आ ही रहे हैं जी।
आप तो उम्मीदवार खुद हैं, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि नहीं, रात में सोइएगा या नहीं?
नींद कहाँ है जी, नींद तो आ नहीं रही, कल 11 बजे के बाद ही आएगी नींद।
आज रात जगह है आपकी महफिल में।
हाँ जी, हाँ जी।
और सलमान रावी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुबह हो चुकी है। लेकिन सलमान, आम आदमी पार्टी के कैंप में तो रत जगा रहा, बाकी खेमों की क्या खबर?
बाकी खेमों का भी वही हाल है, उत्साह उतना ही है, समझिए कि कांग्रेस में भी है। और चूंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे वो थोड़ा रुझान कांग्रेस की तरफ दिखा रहे थे, इसलिए वहां भी काफी गहमा गहमी थी। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि सुबह का वक्त है और बादल छाए हुए हैं आसमान पे, लेकिन जैसे जो एग्जिट पोल और वो बता रहे हैं तो लगता है कि 8-9 बजे तक बादल छटने भी लगेंगे और काफी तेज धूप निकल आएगी यहाँ पर, क्योंकि बारिश भी है रात में
जी। अच्छा, वो तो फॉलो कर रहा है, बादल भी लगता है चुनाव चुनावी असमंजस को जी।
हाँ, लेकिन ये है कि 117 सीटों के लिए मेरे ख्याल से पंजाब में इससे ज्यादा रोचक मुकाबला कभी नहीं रहा होगा, क्योंकि जैसा आपने शुरू में ही कहा कि बिल्कुल दो ही दल हुआ करते थे, दो गठबंधन के, वही कांग्रेस और अकाली दल का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनकी आपस में जो है वो होती थी। लेकिन इस बार वाकई में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से काफी, क्योंकि कल मैं जब मोहाली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आसपास था और यहाँ पे काउंटिंग हो रही डीसी ऑफिस के आसपास था, बहुत सारे एनआरआई मुझे वहां पे नजर आए जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर इस चुनाव को देखने के लिए और चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। तो ये इस बार काफी एक्साइटिंग, काफी उत्साह रहा लोगों के, मतदाताओं के बीच में भी रहा। इसी वजह से आप देखिएगा कि जो पोलिंग का परसेंटेज था वो भी काफी हाई जैसा मान
जी सलमान, हाँ वो कहा जैसा उन्होंने मानने की वो परसेंटेज काफी रहा, तो उसका शायद असर भी पड़ेगा। आप नजर रखें, फिर शाम तक सारी तस्वीर साफ हो ही जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि अखबारों के पन्ने आज क्या कह रहे हैं। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ स्टूडियो में तैयार हैं। तृप्ति बताएं।
अपूर्व जी, तमाम चुनाव की खबरों के अलावा अखबारों ने किन खबरों को तरजीह दी है, मैं उस पर आती हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के खिलाफ एक वारंट जारी किया है। कलकत्ता में जस्टिस कर्नन जो है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस के तहत जमानती वारंट जारी कर दिया है। उन्होंने 20 जजों के बारे में मोदी को चिट्ठी लिखी थी भ्रष्टाचार के लेकर। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर 5 महीने पहले उड़ी हमले के संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी लड़कों की रिहाई की खबर को प्रमुखता से छापा है। अखबार लिखता है कि इन लड़कों को आज वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा और इस रिहाई को लेकर ये लड़के बेहद खुश हैं। जनसत्ता ने लिखा है कि पाकिस्तान की संसद ने हिंदू अल्पसंख्यकों के विवाह के नियमन से संबंधित कानून को आखिरकार मंजूरी दे दी और इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद हिंदू महिलाएं अपनी शादी का दस्तावेजी सबूत हासिल कर पाएंगी। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो रिलायंस जियो और पेटीएम ने अपने विज्ञापनों में अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के इस्तेमाल को लेकर माफी मांगी है सरकार से। अखबार के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दोनों कंपनियों ने सरकार को बताया कि उन्होंने मोदी के फोटो का इस्तेमाल अपने उत्पाद की मार्केटिंग के लिए नहीं किया, बल्कि ये उनकी पहल की सराहना करने का एक तरीका था। वहीं अगर अमर उजाला की बात करती हूँ चलते चलते, कि अमर उजाला ने लिखा है कि नासा ने भारत का जो चंद्रयान 1 था उसे खोज लिया है, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था और 2009 में इससे संपर्क टूट गया था, और बताया कि वही चंद्रमा की सतह पर ही अभी ये चक्कर लगा रहा है।
जी, मिला चंद्रयान का सुराग। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति श्रीवास्तव। और अब सभा समाप्ति से पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। एक अमरीकी अदालत ने जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को डीजल उत्सर्जन स्कैंडल मामले में दोषी पाया है। अमरीका में वॉशिंगटन की सड़कों पर स्टैंडिंग रॉक नेशन के सैकड़ों सदस्य और समर्थकों ने विवादित डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के विरोध में प्रदर्शन किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मटीज ने सोशल मीडिया पर महिला सहयोगियों की नग्न तस्वीरों को साझा करने वाले सैन्यकर्मियों की पूरी जांच का वादा किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी सूडान के और 10 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप दुनिया भर की पल पल बदलती खबरें और उनका विश्लेषण देख पढ़ और सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। फिलहाल अपूर्व कृष्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।